सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत अभी आप सभी के सत्संग में दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जो ये आयोजन इस सत्संग का हुआ है इस हिंदू टेंपल में, जिनके अधिकारियों ने इस प्रकार से जहां सहयोग दिया है, इसके आयोजन में पूरा योगदान दिया है, वहां पर अभी सत्कार भरे शब्द भी उनसे श्रवण किए और उन्होंने सम्मान भी दिया। इसी प्रकार से क्योंकि ये मकसद पावन है, कल्याण के लिए है और सत्संग की महत्ता तो युगों युगों से गाई गई है, इसके लिए जो भी जिस रूप में भी योगदान देते हैं वो मुबारकबाद के पात्र होते हैं। तो इस तरह से यहां पर सत्संग में जो वचन आपने श्रवण किए वो एक एक वचन बहुत कीमती है। वो केवल सुनने लायक नहीं है, वो अपनाने लायक है, और सुनकर जो अपना लेता है, उसको ढाल लेता है, जीवन में जी लेता है उनको, तो वाकई ही वो पूर्ण रूप में आनंद प्राप्त कर लेता है। जैसे अभी भी मिलजुल कर दान मांग रहे थे प्रभु से भक्ति का, तो भक्ति का जिक्र करना तो बहुत सरल है, भक्ति का नाम लेना आसान है, और आज से पहले हुए अनेकों भक्तों का भी जिक्र करना बहुत आसान है, लेकिन जो उनकी अवस्था थी, जो उनके मन के अकीदे विश्वास थे, जो उनके मन की सुंदरता थी, जो निर्छलता थी, जो प्रेम भाव था, जो समदृष्टि थी, तो वाकई ही वो अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक हम इस कदर इस जीवन में ना आनंद प्राप्त कर सकते हैं और ना ही हम औरों के लिए कुछ वरदान बन सकते हैं। तो ये दान मांगा जा गया है पहले भी और आज भी भक्तों ने ही मांग मांगी है कि दाता ऐसी कृपा करो कि हमेशा हम इस भक्ति के रंग में रंगे रहें, और इस तरह से ये नाम के रंग में रंगे हुए, भक्ति के रंग में रंगे हुए हम अपने जीवन को एक सुंदरता हम देते चले जाएं, क्योंकि यही सुंदरता कम होती जा रही है जीवन में से, एक क्रूरता बढ़ती चली जा रही है। इंसान इंसान के रूप में पैदा होकर भी इंसान कहलाने का हक वो गंवाता जा रहा है, वो खोता जा रहा है, अपने ही करतूतों से, अपने ही कर्म से, अपने ही जिसने उसने जो दिशा चुन ली है, जो मार्ग चुन लिया है, उसी ने ही ये इंसान को इंसान कहलवाने का भी हक वो छीन लिया। तो इसलिए यहां पर हर इंसान की चेतनता, हर इंसान की जागरूकता ये बहुत जरूरी, बहुत लाजिम है। अगर वो जागरूकता नहीं रहती है, अगर वो चेतनता नहीं रहती है, तो फिर इंसान उसी बहाव में पहले भी बहते आए हैं और आज भी उसी बहाव में बहते चले जा रहे हैं, और इस कदर सदियों और युगों से और आज के दौर में इसी कदर ये इंसानों की साइकी का ऐसा असर हुआ है कि इस कदर बहते चले जा रहे हैं कि जैसे कोई तेज धारा होती है तो वापस पलटना भी दुश्वार हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो वो धारा उसको बहा के ले जाती है। तो उसी भाव में बहते चले जा रहे हैं। तो इसलिए महापुरुष संतों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने युगों युगों से यही यत्न, यही प्रयास किए हैं कि इंसान अगर इस सहज परमात्मा, इस ईश्वर निराकार इस निर्मल पावन सत्ता के साथ अगर जुड़ जाए, अगर इसी को आधार बना ले, यही जो कायम दायम रहने वाली परम सत्ता है, यही वो रमावा राम है, यही वो अकाल पुरख, इसी के साथ पहले भी नाता जोड़कर ही आनंद और सुख प्राप्त किया गया और आज भी इसी से नाता जोड़कर ही ये सच्चा सुख व आनंद प्राप्त होगा। ये शाश्वत सुख इसी से मिलता है, इससे जुड़ने से मिलता है, इसको अपनाने से मिलता है, इसको दिल में बसाने से मिलता है, इसके एहसास से जीवन का एक एक कदम धरने से मिलता है। तो ये सदैवी सुख शाश्वत सुख, इसीलिए तो कहा है कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, कि अगर सदा का सुख चाहता है तो राम की शरण लेनी होगी, क्योंकि राम ही तो है जो सदा रहने वाला है। बाकी क्या चीज सदा रहने वाली है? ना हुकूमतें सदा रहती हैं, ना दौलतें सदा रहती हैं, ना शोहरतें सदा रहती हैं। और इसी प्रकार से इस दुनिया में तो क्या क्या नहीं हो रहा है, कितनी उथल पुथल हो रही है, नगर के नगर बिल्कुल ढेर ढेरी हो जाते हैं, आलीशान महल एक बिल्कुल ही खंडर बन जाते हैं, किस कदर कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहां पर कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो इसीलिए कहा है कि आस न रखी माया उत्ते आस न रखी बंदिया ते। तो अगर सच्चा एक सुख चाहता है तो आधार इसी का लेना होगा। तो इसलिए कहा है कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, कि राम सदा रहने वाला है। इसीलिए अगर सदा सुख की अभिलाषा है तो सदा रहने वाले आधार को लेना होगा। क्षण भंगुर आधार को लेके सदा का सुख उम्मीद करना, इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि सदा रहने वाली सत्ता केवल और केवल ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर, ये निराकार है। तो इसके साथ नाता जोड़कर इसका बोध हासिल करके इसको जीवन का आधार बनाकर उसी सहजता को प्राप्त करके ही हम जीवन अपना आनंदमय बनाते हैं और हम औरों को भी जीवन में एक आनंद प्रदान करते हैं। तो इसके साथ ये नाता जोड़ना, ये महापुरुष संत जनों की प्रेरणाएं ये युगों युगों से रही हैं। किसी दौलत के साथ नहीं जोड़ा उन्होंने, किसी हुकूमत के साथ नहीं जोड़ा है, नहीं बताया कि अगर हाकिम बन जाओगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं बताया कि तुम्हारी बड़ी लंबे चौड़ी रिश्तेदारी हो गई तो तुम सुखी हो जाओगे। इस निराकार से हटकर और किसी एक चीज को भी नहीं माना, चाहे वो राम जी कहें, चाहे वो कृष्ण जी कहें, चाहे वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन हों, या फिर हजरत ईसा मसीह जी के हों, हजरत मोहम्मद साहब के हों, कबीर जी के हों, रविदास जी के हों, बोतन्ना जी के हों, वैमन्ना जी के हों, तुकाराम जी के हों, नामदेव जी के हों, मीराबाई के हों, सहजोबाई मुक्ताबाई के हों, संत ज्ञानेश्वर जी के हों, जितने मर्जी हम नाम लेते चले जाएं, वो सब के सब इसी बात के ऊपर एक मत और उसी का ही जिक्र करते आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रभु परमात्मा जो अचल है, जो स्वयं भूव है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जो कण कण में है, जो जर्रे जर्रे में है, कि हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, कि हर जर्रे भी सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हां, कि तेरी सूरत ही देखता हूं, कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है, कि हू बहू तेरा जलवा है जिस और भी, बाकी तो हम किसी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में फेस करेंगे देखेंगे उधर कुछ और तस्वीर नजर आएगी, उधर कुछ और नजारा होगा। अगर हम बाई तरफ मुख अपना कर लेंगे नजारा बदल जाएगा, कुछ और नजर आएगा, और पीछे की तरफ घूमकर देखेंगे तो वहां कुछ और नजर आएगा। एक ही नगर, एक ही स्ट्रीट पे, एक ही सड़क पर खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य अलग अलग है। सामने हमें डाउनटाउन की स्काईलाइन नजर आ रही है, बाएं घूमते हैं तो हमें समुद्र नजर आ रहा है, और पीछे घूमते हैं तो पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चारों तरफ के नजारे कुछ और होते हैं। लेकिन यहां पर कहा है कि जिस तरफ भी मुख अपना कर लूं, तेरा जलवा हूबहू है, वैसे का वैसा ही है। मेरे मुख के बदलने से तेरा रूप नहीं बदल जाता है, तू तो वैसे का वैसा ही है। और हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, कि हर जर्रे में, एक जर्रा नहीं कहा है, एक दिशा नहीं कही है कि केवल पश्चिम या केवल पूर्व या केवल एक नगर की तरफ मुख करके, नहीं, दसों दिशाओं में तेरी उपस्थित कहां नहीं है, उपस्थिति कहां नहीं है। तो इसलिए हर जर्रे की बात हो रही है, कण कण की बात हो रही है। तो इस हर एक जर्रे में इसके दर्शन बोध से ही होते हैं। एक बोध जिसको हम कहते हैं कि सत्य का बोध, आत्म बोध की बात हम करते हैं कि सत्य का बोध होता है। तो सत्य का बोध होता है तो फिर जर्रे जर्रे में ही इसकी महसूसियत होती है और जर्रे जर्रे में ही इसके दर्शन होते हैं। जो ये शायर ने कहा कि हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, कि जलवा नुमाई किसको कहते हैं, कि जलवा नुमाई एक उर्दू का शब्द, के जलवा नुमाई कि जलवा मैं ले रहा हूं, तुम्हारी सूरत देख रहा हूं, ये जलवा मैं ले रहा हूं। ये जलवा नुमाई, जलवा कौन ले सकता है? जलवा तो वही ले सकता है जिसकी नजर है। अगर नजर ही नहीं है तो क्या जलवा लेगा? नजर है तो नजारे हैं, अगर नजर ही नहीं है तो नजारे कैसे, क्या नजर नजारे वो लेगा, क्या लुत्फ उठाएगा, क्या वो जलवे लेगा, क्या उस खूबसूरती की सराहना करेगा? वो निगाह ही नहीं है, वो आंखें ही नहीं है, वो नजर ही नहीं है। तो वो नजर को ही बोध कहा गया है, ज्ञान की दृष्टि कहा गया है। तो इसलिए हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, कि तेरी जलवा नुमाई मैं ले रहा हूं, क्योंकि तूने, एक ब्रह्म ज्ञानियों ने वो दृष्टि दे दी है, वो नजर दे दी है, वो नजर ऐसी दी है कि तेरे दर्शन चारों तरफ हो रहे हैं, हर दिशा की तरफ हो रहे हैं। जमी जमा के बिखे समस्त एक ज्योत है, इसी जमी जमा के बिखे समाई हुई ज्योत के दर्शन कर रहा हूं। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कब दर्शन करता है? जब उस मैदान में पहुंचा था, चारों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, नगाड़े और कितने तीर कमान और गांडीव और पता नहीं क्या क्या उठाए, हाथी घोड़े कौरव पांडव। तो किस कैसा दृश्य उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, और वहां तक पहुंचने तक क्या अर्जुन ने पहले कभी कहा था कि भगवान तेरे दाएं को तेरे बाएं को चारों ओर दसों दिशाओं की तरफ नमस्कार? जब तक भगवान कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब तक वो ज्ञान की निगाह नहीं दी थी अर्जुन को, उससे पहले कभी उसने दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक होने की बात नहीं कही। वो ज्ञान की नजर मिल गई, इसका विराजमान होना हर पत्ते में हर जर्रे में, वो तभी उसको नजर आया, तभी चारों तरफ घूमकर नमस्कार कर रहा है। इसका ये विराट स्वरूप दिखाया गया, कहते हैं विराट प्रभु से विराट और क्या हो सकता है, कोई है विराट प्रभु से ज्यादा? प्रभु से विराट कुछ है ही नहीं है, यही तो है जो जर्रे जर्रे में है, तो इससे विराट कुछ भी नहीं है। इसलिए विराट के दर्शन कराए। तो कहने का भाव क्या है कि अगर वो नजर ना दी गई होती तो कहां पर अर्जुन वो नजारा ले सकता? तो केवल नजारा ही नहीं है, वास्तविकता में जैसे पहले कहा कि फिर इसी को ही आधार बनाकर चलना, इसी को ही हृदय में बसा के चलना। एक तरफ तो जरे जरे की बात हो रही है, कण कण की भी बात हो रही है, और दूसरी तरफ ये दिल में कैसे समाए? लेकिन वो भी महापुरुष संत जन बार बार कहते हैं कि हैरान हूं कि इस दिल में समाए हो किस कदर, हालांकि दो जहां में भी समाते नहीं हो तुम, कि हालांकि दो जहां में भी इनमें वो इतनी एक व्यापकता नहीं है कि वो तुम्हें इस तरह से समेट लें, लेकिन फिर भी ये दिल ऐसा तूने रखा हुआ है कि इस दिल में भी तुम रह लेते हो, तो इस प्रकार से इसको फिर दिल में बसाना। पहले ज्ञान की दृष्टि से इसके दर्शन हुए और फिर इसी को दिल में बसा लिया, और जब दिल में बसा लिया तो फिर वास्तविकता में पूर्ण रूप में आनंद प्राप्त हुआ। पहले तो भोजन, स्वादिष्ट भोजन को देखा, नजरों से देखा, लेकिन जब उसी भोजन को मुख में डाला तब जाकर उस भोजन का सिला प्राप्त हुआ, तब जाकर सेहत बनी, तब जाकर जीभ को, रसना को स्वाद मिला। तो इसी प्रकार से कहने का भाव यही है कि ये प्रभु परमात्मा, ये निराकार अकाल पुरख जिसको अनंत नामों से पुकारा गया है, संबोधित किया गया है, गुणगान इसके किए गए हैं, तो महापुरुषों ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि पहले दर्शन मगरों प्रीति, कि पहले तो हमने इसके दर्शन करने हैं। जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अगर एक औरत के बच्चा पैदा नहीं हुआ, हम लाख उसको कहते रहें कि ला ममता, ला अपने में ममता, ला बच्चे से प्यार कर, तो वो लाख उसको कहते रहें, ममता कहते किसको हैं उसका आभास नहीं होता जब तक बालक उसके जीवन में आता नहीं है, तो तब फिर किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसको मालूम पड़ जाता है कि ममता होती क्या है। तो इसी प्रकार से ये जब तक ये जीवन में ये प्रभु का जन्म नहीं हुआ है हमें, हालांकि ये तो अजन्मा है, लेकिन हमारे जीवन में इसका जन्म होना यानी कि इसका बोध होना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है, उस प्रकार से इसको अपनाना जरूरी है। उसको कहते हैं कि प्रभु का जन्म हमारे जीवन में होना ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जैसे वो बालक के जन्म लेने के कारण उस औरत का रूप मां के रूप में बदल जाता है, और वही फिर ममता कैसी उसके रोम रोम में बस जाती है, एक एक धड़कन उस बच्चे को समर्पित हो जाती है, फिर कैसे कुर्बान जाती है उस बच्चे के ऊपर, रात भर गीले बिस्तर पे सोई रहेगी, बच्चे को सूखे स्थान पर सुलाएगी, किस कदर उस बच्चे को पूरी ममता पूरी तरह से वो उसके ऊपर निछावर कर देती है। तो इसी तरह से यहां पर भी यही कहा गया है कि नो गॉड ये वर्शिप, पूजा अर्चना तो हो रही है लेकिन पहले जानना भी तो है इसको, इसको जानकर इसकी भक्ति, इसलिए यहां पर जानने के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इसको हमने जानना है, इसका बोध हासिल करना है, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक वो दृष्टि नहीं मिलेगी, वो दृष्टि नहीं मिलेगी तो उस दृष्टि से हम देख नहीं पाएंगे। इसके लिए फिर महापुरुष संत जन ये भी अगली बात बताते हैं कि अगर इतना जोर दिया जा रहा है कि इसका बोध हासिल करना, इसको जानना, वो ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करनी, तो फिर इसके लिए साधन, फिर उसकी बात भी तमाम वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में, महापुरुषों की वाणी में और महापुरुषों के जीवन से हमें वो प्राप्त होता है कि किस तरह से फिर वो विधि भी बताई गई है। वो विधि भी यही बताई गई है कि गुरबिन भवने तरह ना कोई ज्यों बिरंचि शंकर सम होए, कि एक ब्रह्म ज्ञानियों के से ही हमें ये वो दृष्टि मिलती है, ये वो प्राप्ति होती है। वो यहां तक कह दिया, कितनी बड़ी बात कह दी कि ज्यों बिरंचि शंकर सम होए, कि चाहे वो ब्रह्मा शंकर क्यों ना हो, उनको भी बिन गुरबिन भवने तरह ना कोई। राम जी के जीवन से हम वाकिफ नहीं है क्या? राम जी वशिष्ठ जी के द्वार पे जाते हैं, राम जी को हम भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान करके पूजते हैं, और साथ में जोड़ते हैं भगवान शब्द जब कहते हैं राम जी, केवल राम जी नहीं भगवान राम कहते हैं। वही राम वशिष्ठ जी के द्वार पे जाते हैं, वशिष्ठ जी के द्वार पे जाते हैं, खटखटाते हैं और अंदर से आवाज सुनते हैं वशिष्ठ जी और पूछते हैं कौन, और राम जी क्या कह रहे हैं, यही तो जानने आया हूं। जिनको हम भगवान कह रहे हैं वो उस प्रोसेस उस मर्यादा में से निकल रहे हैं कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। जो आपने कहा कि कौन, यही तो जानने आया हूं, इतनी जानकारी तो है मुझे कि मैं दशरथ का बेटा हूं, जानता हूं कि मेरे फलां फलां भाई हैं, भरत भी है, लक्ष्मण भी है, जानता हूं, माता का नाम भी जानता हूं, अपनी शक्लो सूरत से भी वाकिफ हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन जो मेरा असली वजूद है वो मैं जानना चाहता हूं। और वो भगवान होकर भी इस मर्यादा का पालन कर रहे हैं, और वो इसीलिए कि आने वाले समय में लोग कम से कम ये तो समझें, अगर राम भगवान हैं वो भी इस विधि को अपना रहे हैं तो लोग कैसे समझ लेते हैं कि हम पढ़ पढ़ा के ही मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, केवल यात्राएं करके ही हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, ये बोध हो जाएगा। ये विधियां कबीर जी को क्यों कहना पड़ा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। फिर से वही दृष्टि की बात हो गई कि आंखन देखी, केवल सुननी और पढ़ी नहीं, उसी काशी नगरी में, उसी वाराणसी में, उसी तट पर बैठे हुए लोग कई मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, वहीं पर कबीर जी उन्हीं को कह रहे हैं कि तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी, कि मुझे अब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए, रामानंद जी की कृपा हो गई, मुझे वो दृष्टि दे दी और अब मैं तो अब आंखों देखी बात कर रहा हूं, अब केवल पढ़ी सुनी बात नहीं रह गई, अब तो आंखों देखी, मैं कहूं आंखन की देखी। तो यही दृष्टि मिलती है बुल्ले शाह जी को इनायत शाह जी की कृपा से। और फिर बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं कि शाह इनायत मुर्शद मेरा, जिसने कीता मैं वल फेरा, चुक गया सब झगड़ा चेड़ा, हुण मैनू परमावे कौन। कि पहले मैं भ्रम में था, अज्ञानता थी, अल्लाह को अलग मानता था, राम को अलग मानता था, अल्लाह को किसी एक दिशा की तरफ मानता था, लेकिन शाह इनायत मुर्शद मेरा, एक मुर्शद के रूप में शाह इनायत मेरे जीवन में आ गए और उनकी दया उनकी कृपा कि मुझे वो नजर दे दी, वो उजाला दे दिया, तो पहले जो भ्रम थे उन भ्रमों का नाश हो गया। उन भ्रमों का नाश इस कदर हो गया जैसे भगवान कृष्ण ने जो वो बात कही कि लाखों मन लकड़ी एक चिंगारी लगने से ही भस्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये संशय विहंग उड़ावन हारी कि ये संशय शंके भ्रम ये पंछियों के रूप में जो आकर फसल उजाड़ते हैं, और अगर आवाज दी जाए, कोई साउंड की जाए, कोई ताली बजाई जाए, किसान अक्सर यही करते हैं, ताली जोर से बजाएंगे, मुख से आवाज निकालेंगे, वही पंछी जो वो सिट्टों के ऊपर झपटते हैं और दाने नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं, फसल के ऊपर असर होता है, किसान की कितनी मेहनत, तो वो किस कदर आवाज निकालता है, पंछी को उड़ाता है कि पंछी उड़ जाए। तो यहां पर भी यही कहा कि ये संशय रूपी भ्रम रूपी पंछी भी उड़ जाते हैं जब ज्ञान रूपी ताली बज जाती है, तो ये पंछी उड़ जाते हैं, ये भ्रम और भ्रांतियों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म कहो नानक अटलिए धर्म। तो तजो सब भरम, ये भ्रमों का नाश ये तभी होगा अगर ये बोध होगा तभी, वरना तो अगर नहीं मालूम तो फिर तो हम उसी एक बेचैनी में रहते हैं कि किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और इस तरह से हम उसकी नाम तो सुन रखा है लेकिन उसकी पहचान नहीं है। जैसे एक इंसान दिल्ली से चला मुंबई के लिए, ट्रेन में सफर कर रहा है और सामने ही सीट के ऊपर इंसान और भी बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुआ है और उसने मुंबई जाना है किसी काम के लिए। वहां पर काम है कि एक कोई दफ्तर में वहां पर जरूरी काम है, वहां पर ऑफिसर को मिलना है, ऑफिसर के नाम से भी वाकिफ है और इसी तरह से उधेड़पन उसके मन में चल रहा है और वहां पर जाकर मिलूंगा, वो फलां चर्च गेट के इलाके में ऑफिस सिचुएटेड है, वहां पर जाऊंगा, वहां मिलूंगा। तो इस प्रकार से रास्ता उसका बीत रहा है, रास्ता बीत रहा है, बीच बीच में बात भी हो रही है, सामने वाले से भी बात हो रही है, साथ वाले की बातें भी सुनी जा रही हैं। तो इस प्रकार से वो वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचता है, उस दफ्तर में पहुंच जाता है और दफ्तर में पहुंचता है तो सामने ऑफिसर के सीट पे देखता है, हैरान हो जाता है कि ये तो वही शख्स है जो बिल्कुल मेरे सामने ट्रेन में सामने सीट पे बैठा हुआ था, बातें भी कर रहे थे हम, यही था ऑफिसर। काश मुझे वहां पता चल गया होता तो ये सारे रास्ते जो मैं सोच रहा था, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा है कैसा नहीं है, वो सारी में बेचैनी मेरी खत्म हो जाती उसी वक्त। लेकिन नाम से वाकिफ था, शक्ल से वाकिफ नहीं था, उसको इसलिए वाकफियत नहीं थी। तो कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से ये भ्रमों का नाश ये होता है तब जब वास्तविकता में हमें वो ज्ञान उजाला प्राप्त हो जाता है। तो दास जो बात कह रहा था कि विधि जो महापुरुषों ने बताई कि इस प्रकार से जो विधि अपनाई भी गई और बताई भी गई कि इस प्रकार से जब तक ब्रह्म ज्ञानियों का संग नहीं मिलता। अब मीराबाई की बात ले लें, मीराबाई की भक्ति, उसका प्रेम जो श्याम के प्रति, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? कैसे बालपन की अवस्था से ही वो श्याम की प्रेमी, हमेशा ही वो आकृति अपने पास रखती थी, सिरहाने रखती थी, उठाई फिरती थी, तो किस प्रकार से वो प्रेम श्याम के प्रति। लेकिन जब तक गुरु रविदास जी नहीं मिले तब तक श्याम का असली अविनाशी रूप का बोध नहीं हुआ था तब तक। और जब रविदास जी ने ज्ञान की दृष्टि दे दी मीरा को तो तब उसको उसने श्याम के असली रूप को जाना, जो अविनाशी रूप है, जो जलता नहीं, जो हवा के साथ सूखता नहीं, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं है, जो उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं है, वो श्याम का असली रूप, निराकार रूप, आकार रहित रूप, अविनाशी रूप, वो रविदास जी ने वो ज्ञान की दृष्टि दी। तो तब धन्य माना मीरा ने, पहले तो यही कह रही थी कि लकड़ी जल कोयला भई है राख, मैं अभागन यूं जली कोयला भई ना राख, कि मैं तो लकड़ी ही सुलग रही हूं, लकड़ी ही सुलग रही हूं, तो कोयला तो बनी नहीं, अभी तो राख तो दूर की बात है, अभी तो लकड़ी ही सुलग रही हूं। लेकिन जब रविदास जी मिल गए तो वो पूर्णता को प्राप्त हुई, तब मंजिल उसने पा ली, तब मंजिल पाई असली जो उसने पानी थी, जिसके कारण उसका श्याम के प्रति वो प्रेम, उसको पूर्णता प्राप्त होनी थी, वो बोध हुआ तब वो पूर्णता प्राप्त हुई। तो पहले तो वही अधूरेपन का बयान है कि लकड़ी जल कोयला भई है राख, मैं अभागन यूं जली कोयला भई न राख, अपने आप को अभागन कह रही है कि मुझे अभी वो प्राप्त नहीं हुआ है जो असली मंजिल है, वो अभी नहीं प्राप्त हुआ है, वो अधूरापन सा उसको खटकता रहा, प्रेम भी है, लगाव भी है, लगन भी है, लेकिन अधूरापन खटक रहा है कि अभी मंजिल नहीं मिली है। तो मंजिल पे पहुंचाने का साधन गुरु रविदास जी। और इस प्रकार से फिर अगली इससे बात, अगला क्या पहलू, फिर कहीं पर जाति के सवाल आ जाते हैं, जी गुरु भी तो अपनी जात का होना चाहिए। अब फिर ये सवाल आ जाते हैं और उधर महापुरुष कह रहे हैं कि जाति पाति पूछे नहीं, कोई हर को भजे सो हर का होई। उधर ये कहा जा रहा है कि जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि जाति ना पूछो साधु की, जाति कहां पर होती है साधु की? डॉक्टर की जाति होती है क्या? टीचर की जाति होती है क्या? कोई जख्म किसी को पहुंच गया है, लहू लुहान हो रहा है, रक्त बह रहा है, लहू बह रहा है, तो लेके जाते हैं उस मरीज को जो इस कदर इंजर्ड हालत में है, लहू बहे चले जा रहा है, डॉक्टर है वहां पर है, उस अगले लोकेलिटी में है, चलो वहां गाड़ी भगाओ दौड़ाओ, वहां जाते हैं, वहां क्या जाके पूछते हैं पहला सवाल, डॉक्टर साहब जरा अपनी जाति तो बताइए। नहीं, एक ही सवाल, एक ही ध्यान, किसका रक्त रोका जाए, स्टिचेस लगाए जाएं, वरना तो और ज्यादा खून निकल गया तो मामला सब समाप्त हो जाएगा, हाथों से छिन जाएगा ये। तो कौन पूछता है, कहां पूछता है? कहीं पर जाति नहीं होती है डॉक्टर की, और फिर पेशेंट की भी कोई जाति नहीं होती। डॉक्टर ये नहीं कहता है कि तुम कौन जात वाले हो, अगर इस जात वाले हो फिर पेट के लिए दर्द की दूसरी दवा है, अगर दूसरी जाति वाले हो तो पेट की दूसरी दवा है, फिर इंजेक्शन दूसरा लगेगा अगर तुम दूसरी जाति वाले हो। ना पेशेंट की जाति होती है, ना डॉक्टर की होती है, ना ही स्टूडेंट की होती है, ना ही टीचर की होती है। ना लिबास को टीचर कहते हैं, ना ही लिबास को स्टूडेंट कहते हैं। जैसे वो महापुरुष गीत में पंक्ति बोलते हैं कि ना तन नु सतगुर कहंदे ने, ना ही तन चेला हुंदा है। कि इस प्रकार से ये शरीरों की बात नहीं, ये लिबासों की बात नहीं, शरीर के भ्रम में आ जाते हैं। अष्टावक्र जी की बात हम सुनते ही हैं कि राजा जनक ने जब वो चाहा कि सत्य और असत्य का निर्णय कराने वाला आ जाए, और कितने वहां पर लोग उपस्थित हो गए, जो बहुत पठन पाठन करने वाले, बहुत ऊंची जाति वाले, बहुत अपने आप को रिद्धियों सिद्धियों के मालिक मानने वाले वहां पर उपस्थित हो गए, और अष्टावक्र जी को भी वहां पर लाया गया उठाकर, और अष्टावक्र जी जिनके अंग सलामत उस रूप में नहीं थे, तो उनको देखते ही वहां सारे हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे कि ये आया राजा का अंधकार या अज्ञानता दूर करने के लिए, सत्य और असत्य का निर्णय कराने के लिए, अपने शरीर को देखता नहीं है, कितने बल पड़े हुए हैं शरीर में, ये आया और जोर जोर से मजाक उड़ा रहे हैं। तो अष्टावक्र जी सुनते हैं, खामोश हो जाते हैं। जब थोड़ा शांति हुई तो अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं कि राजन, आपने कुछ ऐलान किया था, उसी ऐलान को सुनकर ये भी आए हैं, उसी ऐलान को सुनकर मैं भी आया हूं, जो सत्य और असत्य के निर्णय के लिए आपने निमंत्रण दिया है, मैं उसी कार्य के लिए आया हूं, तो मैं आपका ये कार्य कर सकता हूं, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है, और शर्त यह है कि ये जितनी भी चमार सभा बैठी है इन सबको बाहर भेज दो। बस चमार सभा शब्द कहने की देर वो जितने लोग बैठे हुए थे लाल पीले गुस्सा लाल हो गए, राजा देखो आपके सामने हमारा निरादर, हमें चमार सभा कह रहा है, इसको यहां से निकाल दो। तो बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में राजा जनक को भी महसूस हुआ, कहने लगे राजन के हे महात्मा, शोभा नहीं देता, आपने ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए इन सब के लिए? तो आगे से अष्टावक्र जी ने कहा, कतई मेरा निरादरी का भाव नहीं, मैंने जो चमार शब्द इस्तेमाल किया है वो इनकी निरादरी के लिए नहीं, मैंने इसलिए किया है कि चमार हम उसको कहते हैं जो चमड़े की परख करता है, तो इन्होंने भी तो अभी मेरा चमड़ा ही देखा है, मेरा ज्ञान थोड़ी देखा है, तो इसलिए ना ही ना सतगुरु ਤਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਤ ਵਹੀ ਕਿ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਧਕੀ, ਪੁੱਛ ਲੀਜੀਏ ਗਿਆਨ, ਮੋਲ ਕਰੋ ਤਲਵਾਰ ਕਾ ਪੜਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮਿਆਨ। ਤੋ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਭਾਵ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਜਬ ਵਾਕੇ ਹੀ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਇਸੀ ਸਤ ਕਾ ਹਮੇ ਬੋਧ ਕਰਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹਮ ਸਭ, ਔਰ ਫਿਰ ਯਹ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਹਮ ਆਤਮ ਰੂਪ ਮੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਸੰਗ ਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਮ ਨਿਰੰਤਰ ਯਹ ਸੁਨਤੇ ਸੁਨਾਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕੇ ਹੀ ਯਹ ਖਾਮ ਖਾ ਕੀ ਦੂਰੀਆਂ, ਯਹ ਖਾਮ ਖਾ ਕੀ ਦੀਵਾਰੇ, ਯਹ ਪਰਾਏਪਨ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਕਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਹੂੰ, ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੂਸਰੀ, ਤੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੂਸਰਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਹਮ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਯਹ ਵਾਕੇ ਹੀ ਯਹ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਯਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਮੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਧ ਕੇ ਕਾਰਨ ਭੇਦ ਮਿਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਭੇਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੋ ਸੰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋ ਸਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੋ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋ ਸਭ ਆਏ ਇਸ ਏਕ ਮੇ ਡਾਲ ਪਾਤ ਫਲ ਫੂਲ, ਕਬੀਰਾ ਪੀਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਗਹਿ ਪਕੜਾ ਜਬ ਮੂਲ। ਫਿਰ ਤੋ ਸਮਝ ਮੇ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਹਰੀਜਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋ ਸਭ ਆਏ ਇਸ ਏਕ ਮੇ ਡਾਲ ਪਾਤ ਫਲ ਫੂਲ, ਕਿ ਯਹ ਡਾਲ ਪਾਤ ਫਲ ਫੂਲ ਯਹ ਸਭ ਏਕ ਸੇ ਹੀ, ਏਕ ਬੀਜ ਸੇ ਹੀ ਵਰਿਕਸ਼ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਟਹਿਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫੂਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਏਕ ਹੀ ਵਰਿਕਸ਼ ਮੇ ਨਾ ਉਸਕਾ ਰੰਗ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਟਹਿਨੀ ਕਾ ਰੰਗ ਪੱਤੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਕਾ ਰੰਗ ਫੂਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਫੂਲ ਕਾ ਰੰਗ ਫਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ। ਯਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਲੱਗ ਬੀਜ ਥਾ ਔਰ ਫੂਲ ਕੇ ਲੀਏ ਅਲੱਗ ਥਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਥੇ, ਏਕ ਹੀ ਬੀਜ ਥਾ, ਉਸੀ ਏਕ ਬੀਜ ਮੇ ਸੇ ਹੀ ਵੋ ਵਰਿਕਸ਼ ਜਿਸ ਮੇ ਅਨੇਕੋ ਰੂਪ ਔਰ ਅਨੇਕੋ ਰੰਗ ਔਰ ਉਨਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਏਕ ਹੀ ਬੀਜ ਸੇ। ਤੋ ਉਸੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਏ ਇਸ ਏਕ ਮੇ ਡਾਲ ਪਾਤ ਫਲ ਫੂਲ, ਕਬੀਰਾ ਪੀਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਗਹਿ ਪਕੜਾ ਜਬ ਮੂਲ। ਜਬ ਮੂਲ ਕੋ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੀਜ ਕੋ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਪਰ ਭੇਦ ਰਹੇ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਯਹੀ ਮੂਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਹ ਕਾਦਰ, ਯਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਯਹ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਮੇ ਬਸਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਰਚਨਾ ਜੋ ਦੇਖਤੇ ਹਮ, ਇਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵੋ ਕਾਦਰ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਇਸੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਇਸੀ ਕਾਦਰ ਕੀ, ਕਾਦਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਦਰ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕੌਣ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੋ ਲਹਿਰੇ ਹੋਂਗੀ, ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕੌਣ ਸੀ ਲਹਿਰ। ਤੋ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਕਾਦਰ ਔਰ ਕੁਦਰਤ, ਅਕਸਰ ਹਮ ਕੁਦਰਤ ਮੇ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਹੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਦਰ ਹਮਾਰੀ ਆਂਖੋ ਸੇ ਓਝਲ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਬ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਨਿਗੇਟ ਕਰਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸੀ ਲਈ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਸਿਰਫ ਬਕਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਬਕਾ ਕੇ ਆਸ਼ੇ, ਬਕਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਇਮ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਏਕ ਐਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾ ਥਾ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਤੋ ਏਕ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਗਏ ਉਸਮੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੋ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ। ਤੋ ਯਹ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ, ਵੋ ਤੋ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾ? कहने लगा वो जिसने टोपी पहनी है, कहते चारों ने टोपी पहनी है। वो जिसने सफेद कमीज पहनी है, कहते चारों ने पहनी हुई है। नहीं काली पैंट, कहते चारों ने काली पैंट पाई है। जब यही बात तीन दफा हुई तो जिस जो कह रहा था कि वो हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, उसने जेब में से अपनी पिस्तौल निकाली, रिवॉल्वर निकाली, रिवॉल्वर निकालकर गोली चलानी शुरू की और गोली चलाई को तो तीन को मार दिया, उन चार में से तीन को मार दिया। तो कहने लगा ये जो बचा है ना ये हमारा दुश्मन है। तो इस प्रकार से यहां पर नहीं कहा जा रहा, यहां पर तो वाकई ही वो एक ये जो बका है, ये जो परिपूर्ण है, इसका बोध करा दिया जाता है। फिर अपने आप ही हम जान जाते हैं कि यही तो था कादर, और ये बाकी जिनको हम साथ सब कुछ मान रहे थे ये तो कुदरत थी इसकी। तो कादर के कारण ही कुदरत है, कलाकार के कारण ही कलाकृतियां हैं। तो इसी प्रकार से एक समुद्र के कारण ही लहरें हैं। लहरों के बगैर समुद्र हो सकता है, लेकिन समुद्र के बगैर लहरें नहीं हो सकती है। देयर कैन बी ओशन विदाउट वेव्स, बट देयर कैनॉट बी वेव्स विदाउट अ ओशन। दिस इज द ट्रूथ अबाउट गॉड एंड गॉड्स क्रिएशन। गॉड एग्जिस्टेड एंड व्हेन ही ब्रॉट certain this universe into existence and these planetary systems and everything for that matter what we call nature, so God was, and because of God all creation came into existence, and it is not vice versa that because of the creation or nature God came into existence. No. Similarly, as I said that waves are from the ocean because of the ocean. If there is no ocean, there are no waves. Ocean's existence is not because of the waves. Waves' existence is because of the ocean. So, कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से ये भक्त महापुरुष संत जन यही बताते हैं कि इसको जानना है, इस हरि को जानना है, इस परमात्मा को जानना है, इसका बोध हासिल करना है। जहां पर वो विधि बताई कि इस तरह से ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिलता है तब ये संभव होता है, और ये भी अगर भ्रम है कि इसकी प्राप्ति के लिए तो कहीं पर परिवार छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से समाज से नाता तोड़ना पड़ेगा, सबसे दूर हो जाना पड़ेगा, तो तब ये संभव है, तब ये प्राप्ति संभव है। जंगलों में जाने से इसकी प्राप्ति होगी, तो वो भी फिर कह दिया कि जे रब मिलदा जंगल बेले तब मिलदा गावां वछियां। फिर सोचा कि स्नान करने से मिलेगा, जे रब मिलदा नहातियां धोतियां तो मिलदा डडुआं मछियां। फिर सोचा कि शायद मणि मसाणों में चले जाएं, जे रब मिलदा मणि मसाणी तां मिलदा चाम चिड़कियां नू। कहां पर कसर छोड़ी है महापुरुषों ने, कितने स्पष्ट शब्द, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कि इस प्रभु को पाने के लिए भी कितने कितने भ्रम पाल रखे हैं मन में कि ये विधि है या वो विधि है। तो इसलिए परिवार से नाता तोड़ने की अगर बात होती फिर तो उसी कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ घूमकर चलें, फिर तो अर्जुन तो वहां से जाना ही चाह रहा है, वो तो जाना ही चाह रहा है वहां से, और भगवान कृष्ण ही हैं जो बार बार उसको रोक रहे हैं कहां जा रहा है। यही बताया कि कर्म भूमि में रहकर ही धर्म की पालना होनी है, कर्म भूमि से दूर हटकर नहीं। कौन सा ऐसा जवान सिपाही है जो मैदाने जंग से भाग खड़ा हो और उसको परमवीर चक्र मिले हो? नहीं, कोर्ट मार्शल तो जरूर किया होगा उसका, लेकिन तगमे नहीं मिलते हैं, मेडल्स नहीं मिलते हैं, सम्मानित नहीं किया जाता है कि ये तो भाग खड़ा हुआ है मैदाने जंग से। तो इसी प्रकार से यहां पर भी कहा है कि घर ही में जोग भोग घर ही में, कि गृहस्थ में जो रहे उदास कौन आना खाता का दास। तो इस प्रकार से यहां पर भी यही कहा है कि इसकी प्राप्ति के लिए भी ये नहीं कि कहीं वीरानों में जाना पड़ेगा या शरीर को सुखाना पड़ेगा, ये तो जरूरत और जरूरत यही केवल होती है कि इस प्रकार से ऐसे प्रभु परमात्मा निराकार का जिनको बोध है उनसे नाता जोड़ लिया जाए और तब हमारा ये दुनिया में आने का कार्य सफल हो जाता है, फिर हमारा ये मकसद पूरा हो जाता है और ये मकसद पूरा हो जाता है तो फिर हम सुरखरू हो जाते हैं, फिर ये आवागमन के बंधन से निजात ये प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए ये संदेश ये पैगाम ये सबसे जरूरी माना गया है, जिसको अपनाना है, जिसकी तरफ ध्यान देना है, जिसकी तरफ गौर करना है। इसकी तरफ गौर करेंगे, इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो तभी वास्तविकता में हमारा ये पार उतारा हो जाएगा। तो भवसागर से पार उतरने की बेला है ये इंसानी जन्म, और ये बेला भी अगर हाथों से चली गई तो पौड़ी छिटकी हाथ ना आए, मनमुख कहला जन्म गवाए, कि फिर तो ये दुर्लभ हो जाता है जन्म, ये बार बार हाथ नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे दुर्लभ जन्म को पाकर सबसे ज्यादा अहमियत इसको दो, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो दास अक्सर उसका जिक्र करता है, वो मिसाल देता है कि कितने खूबसूरत और सरल शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जिनसे उन्होंने प्राप्ति की वो क्या कहते हैं कि ये प्रभु प्राप्ति की इच्छा तुम्हारे मन में ऐसी होनी चाहिए जैसे डूबते हुए इंसान को पानी से बाहर आने की इच्छा होती है। अटमोस्ट डिजायर इन ए पर्सन हु इज ड्राउनिंग इन वॉटर, व्हाट इज दैट अटमोस्ट डिजायर? ओनली एंड ओनली वन डिजायर, टू कम आउट ऑफ द वॉटर, बिकॉज इफ ही डजंट कम आउट ऑफ द वॉटर डेफिनेटली इज गोइंग टू ड्राउन एंड दैट्स हिज एंड। So the ultimate and utmost desire of a drowning person is to come out of the water. Similarly, that sort of intensity of desire one should have to know the Lord God Almighty. तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन भक्त जन ये बार बार यही एक इंसान को एहसास कराते हैं कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और तुम क्या इंपॉर्टेंस देते हो इसको, कुछ भी नहीं, ये तुम्हारी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंस में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, ये प्रभु परमात्मा कोई नहीं कर लेंगे, कोई नहीं हो जाएगा, इसको सबसे पीछे रखते हैं। इसीलिए कहा है कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, कि भजन को आलसी और भोजन को तैयार, वो भी आपने अनेकों दफा सुना है, दास अक्सर दोहराता है कई स्थानों के ऊपर कि इसी तरह से एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं कि रोज घर का खाना खा खा के उब गए हैं, कोई चेंज लाएं, कहीं बाहर खाना चाहिए, और बाहर खाने जाते हैं, चलते हैं, चेंज हो जाएगा जायका, टेस्ट कुछ बदलते हैं। ठीक है बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो एक सज्जन आए, थोड़ी देर बाद कहने लगे कि भाई साहब मैं चल कर आया आपके घर, मेरे घर कीर्तन है तो आप कीर्तन पे आएंगे? तो पति पत्नी कहने लगे नहीं जी, बहुत ही जरूरी काम है आज, हम नहीं, वी आर नॉट अवेलेबल दिस इवनिंग, हमें वो समय नहीं है, बहुत जरूरी काम है। जाना तो उन्होंने खाना खाने था, यही था उनका जरूरी काम। तो इस प्रकार से उनसे माफी मांग ली, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और सज्जन आया, वो कहने लगा कि भाई साहब मैं निमंत्रण देने आया हूं, हमारे घर में भोजन है, आप आएंगे? दोनों की आंखों में चमक आ गई कि हम टेस्ट चेंज करना चाह रहे थे, रेस्टोरेंट होटल में तो पल्ले से पैसे देने थे, ये भाई साहब भोजन के लिए बुलाने आ गए, इससे बड़ी बात क्या है, मुफ्त में ही हमारे काम बन जाएगा। तैयार त्योर होके पहुंच गए उसके घर, देखा कुछ लोग और भी इस तरह से हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जूते पहनकर बाहर जा रहे हैं, और वो जिस निमंत्रण देने आया था वो पूछने लगा, उसने देखा कि आए हुए हैं दोनों पति पत्नी, तो कहने लगा कैसे लगा भोजन। वो दोनों हैरान एक दूसरे का चेहरा देख रहे कि भोजन एक कोई गिलास पानी का नहीं आया सामने, और ये जनाब पूछ रहे हैं भोजन कैसा लगा भोजन। तो वो क्या बेचारे कुछ बोले ना, जुबान से बात ना निकले। फिर अगली बात जब उसने की कि कितना अच्छा था भोजन, सारे झूम रहे थे भोजन को सुन सुन के, तो जब ये कहा तो तब उनको बात समझ में आई कि वो सज्जन जो था वो बंगाली था, और बंगाली जो हिंदी भी बोलते हैं शब्द गोल करके बोलते हैं, जैसे कलकत्ता को कोलकाता, तो वो तो अपनी तरफ से भजन के लिए बुलाने आया था, लेकिन इन दोनों ने समझ लिया भोजन भोजन मिलेगा आज हमें। तो इसीलिए कहा कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार। तो इसलिए संसार के इंसान को ये प्रभु की प्रेफरेंस और विशेषता, ये पहलू जीवन में इसको सबसे पीछे रखता है और बाकी सभी सिलसिलों को सबसे आगे रखता है। और वो जिसको सबसे आगे रखता है उसके बारे में ही कहा है कि माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा दीप जी पर चौंदी है, पक्की गल समझ लै मेरी ए आउंदी ते जान दिए। तो इस प्रकार से जो दीसे सो सगल विनाशे, ये थोड़ी देर पहले भी आप सुन रहे थे कि जो दीसे सो सगल विनाशे, तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार से इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार अकाल पुरख का बोध हासिल करने, इसको जानने के ऊपर ही ये जोर दिया जा रहा है। और जहां पर आत्मा के भ्रम को मिटाना है वहां पर मन की भ्रांतियों को भी मिटाना है, और मन से अपने कदूरतों को दूर करना है, वैर ईर्ष्या के भाव को दूर करना है, और इस प्रकार से प्रेम भाव से युक्त होकर, करुणा के भाव से युक्त होकर, इस प्रकार से एक सुंदर जीवन जीना है जिससे हमें भी आनंद मिले, शोभा प्राप्त हो, औरों के लिए भी हम आनंद का, हम सुख का, हम कारण बनते चले जाएं, ऐसी हमारे मन को भी एक अवस्था ये प्राप्त होती चली जाए, यही एक शुभकामना, यही एक प्रार्थना, यही एक अरदास ये की जा रही है। और वाकई ही यहां मिलजुल कर आज इस सत्संग में ऐसी ही भावनाओं को अभिव्यक्ति ये दी जा रही थी, और जो चाहे छोटे बच्चों ने अपनी बात कही या जवानों ने या बुजुर्गों ने, किसी भजन के रूप में या किसी कविता के रूप में या किसी बखान के रूप में, तो सब ने इन्हीं पहलुओं की तरफ ही हमारा ध्यान जो था वो अग्रसर वो किया है। तो इसी प्रकार से प्रार्थना यही है कि दातार कृपा करे, सभी को ही तौफीक बख्शे, ताकि सभी समय रहते हुए ही इस दिशा की तरफ ये बढ़ निकलें, और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल करें, अपने जन्म को धन्य करें। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, इन द एंड आई विल जस्ट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस टू बी हियर इन फ्लोरिडा एंड फॉर लॉडरडेल, डे बिफोर यस्टरडे डिड गेट ए चांस टू attend the congregation satsang in Fort Myers in the Hindu temple, and this is the last station, last satsang of this trip of North America, because as you all know that I left India on 8th of August, and after traveling to England, Ireland, Canada, various cities, and then on to America, entered from Seattle, then to San Francisco, and then to LA, and then Houston, Chicago, Washington, D.C., and from Washington to Florida. So, since 8th of August until date happened, I got the chance to visit all these places and meet saints and meet many other people who are full of devotion and who are interested in knowing this ultimate truth, who believe in humanity and who believe that humanity is the true religion, and who want that, yes, we should strengthen the aspect of love in our lives and we should live our life loving and not hating others. So all these places where I happen to visit and also many dignitaries have been coming or they have been sending their message, like today also the mayor of Lauderdale sent the message and good wishes. So I also thank the mayor and the organizing committee of this Hindu temple, and also I convey my good wishes to all the people of Fort Lauderdale, not only Fort Lauderdale, for all the people of Florida, or for all the citizens of United States, and taking another step forward, best wishes and prayers for whole of mankind. Sabka bhala karo Bhagwan, sabka sab vidhi ho kalyan. To is prakar se ye sama jo tamam bita hai, to is yatra ka antim padav wo Saint Martin hai, jahan par kal hi, kyunki itwar hai, ravivar hai, to wahan kal sham ka satsang Saint Martin mein rakha gaya hai. वहां पर दास को पहली दफा ही जाने का मौका मिल रहा है, वहां कभी पहले जाना नहीं हुआ. तो इस प्रकार से ये यात्रा तमाम जो हुई है बहुत खुशी हासिल हुई है, बहुत इस प्रकार से देखने को मिला है उत्साह. यहां पर भी इतने जो भक्तजन मौजूद चेहरे, जो पहले तो दास सोचता था कि इंग्लैंड, क्योंकि वहां पर डिस्टेंसेस कम है, बहुत नजदीक नजदीक शहर हैं, यहां से वहां संगतें चली जाती हैं, या पंजाब जाएं तो गोविंदगढ़ वाले खन्ने पहुंच जाते हैं, वो लुधियाना पहुंच जाएंगे, वो जलंधर पहुंच जाएंगे, वो वहां पहुंच जाएंगे, साथ साथ शहर हैं. लेकिन कभी कुछ साल पहले तक तो यहां अमेरिका कनाडा में कभी नहीं ये ऐसा नजारा देखा था, कि अब पता ही नहीं चलता कि ईस्ट वाले कैसे, जैसे कोई चेज कर रहा होता है पीछे पीछे, तो ईस्ट वाले वेस्ट तक पहुंच गए, वेस्ट वाले भी चलकर यहां आ गए, कहां कहां पहुंच रहे हैं. तो इस तरह से ना कनाडा का ना अमेरिका को भी भेद रहा. तो इस तरह से उत्साह कि हर घड़ी का लाभ उठाया जाए, जितना समय मिले उतना ही इस प्रकार से बिताया जाए दर्शनों में, सत्संग में. तो ऐसा एक उत्साह जहां सत्संग करने का, वहां पर परोपकार करने का और सेवा करने के जो जज्बे हैं, सभी में दातार ऐसी कृपा करे कि और शक्ति दे, और समर्था दे, और लगन दे, और इस प्रकार से सभी जीवन का आनंद लेते जाएं, संसार का उद्धार करने में अपना योगदान देते जाएं. सत्संग जी धन्यवाद.